हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ध्रुव के बर्थडे के लिए युग और कृषा उसके साथ शॉपिंग करने के लिए मॉल में आए हुए थे। उनके साथ मलिक, मीरा और वीर भी थे। पूरी सिक्योरिटी होने के बावजूद उन पर वहां पर अचानक से अटैक हो चुका था। जिन्होंने भी अटैक किया था वो अभी तक इस बात से अनजान थे कि युग राणा जिंदा है। वो ध्रुव को मारने के लिए आए थे। शॉपिंग करने के बाद वो सभी जब ग्राउंड फ्लोर पर चेकिंग करवा रहे थे तब वहां अचानक मॉल का दरवाजा बंद हो गया और कुछ मास्क वाले आदमी आ गए थे। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ युग समझ गया था और उसने होशियारी दिखाते हुए उन सबको छुपने के लिए कहा। वो सब सेफ जगह पर थे लेकिन उनके वहां जाते ही वहां काफी सारे मास्क वाले आदमी आ गए थे जिनके हाथों में गन थी। युग के लिए ये मुश्किल स्थिति थी क्योंकि ध्रुव के लिए ये सब नया था। वो उसके सामने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना चाहता था जिसकी उसके मासूम मन पर गलत असर पड़े। अब हम क्या करेंगे युग, कहीं वो मेरे बच्चे को कुछ कर तो नहीं देंगे, कृषा ने घबराकर धीमी आवाज में कहा। उसके ऐसा कहने पर युग ने सर्द निगाहों से उसकी तरफ देखा और कहा, मेरे होते हुए मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा, ना तुम्हारे साथ और ना ही ध्रुव के साथ। तुम बस इसकी आंखों पर हाथ लगाकर रखना और कान में एयरपॉड्स डाल दो ताकि ये कुछ सुन ना सके। कृषा ने वही किया जो युग ने कहा था। उसने ध्रुव के कान में एयरपॉड्स डाल दिए और ध्रुव को अपने सीने से लगा लिया। ध्रुव को इन सबसे काफी डर लग रहा था तो वैसे भी वो दूसरी तरफ नहीं देख रहा था। तभी वहां गोली चलने की आवाज आई। युग ने झांक कर देखा तो काउंटर पर खड़ी लड़की को उन्होंने गोली मार दी थी। ध्रुव की सिक्योरिटी देखने के बाद युग ने कहा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी से मेरा मतलब कुछ भी, एट एनी सिचुएशन तुम दोनों बाहर नहीं आओगे। बोलते हुए युग ने अपनी वेस्ट पैंट से गन निकाली और उसे लोड करने लगा। कृषा ये देखकर हैरान थी कि एक नॉर्मल सी शॉपिंग पर आने के लिए भी युग ने अपने साथ गन ले रखी थी। युग वहां से बाहर झुककर देखने को हुआ तभी कृषा ने उसे वापस अपनी तरफ खींचकर कहा, पागल तो नहीं हो गए हो तुम, मुझ में बार बार हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारे बिना रह सकूं। अगर तुम्हें जाकर फाइट करनी है तो मुझे भी अपने साथ लेकर चलो या फिर वेट करो कि वो यहां से चले जाए। दोनों ही मेरे उसूलों में नहीं है, ना मैं छुपकर यहां बैठने वाला हूं और ना ही किसी के कुछ करने का इंतजार करूंगा, युग ने कृषा को घूरते हुए कहा और फिर धीमे कदमों से चलकर दूसरी तरफ आ गया। दूसरी तरफ मलिक, मीरा और वीर बैठे थे। युग के हाथ में गन देखकर मलिक समझ गया था कि वो क्या करने का सोच रहा है। मलिक भी तैयार हो गया। फिर युग ने मीरा की तरफ देखकर कहा, वही करो जो कृष कर रखा है, कुछ भी हो जाए बच्चों के साथ बाहर मत निकलना। मीरा ने कृषा की तरफ देखा तो उसने ध्रुव को खुद से चिपका रखा था। मीरा ने भी वही किया, उसने वीर को खुद के करीब कर लिया। युग ने अपने एयरपॉड्स निकाले और वीर के कानों में लगा दिए। उनके साथ मॉल में ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं आए थे और जो आए थे उन्हें उन लोगों ने गोली मार दी थी। अब सिर्फ युग और मलिक ही बचे थे। उनके सामने लगभग 10 आदमी थे। बाकी के लोगों ने बाहर से मॉल को घेर रखा ताकि कोई अंदर ना आ सके। मलिक और युग ने अपनी अपनी पोजीशन ली और फिर बाहर की तरफ झांकते हुए उन्होंने दो लोगों पर निशाने साधे। युग ने सामने मौजूद आदमी के माथे के बीचों बीच गोली मारी थी तो युग ने उसके पास खड़े आदमी के सीने पर गोली चलाई थी। अपने दो साथियों को एक साथ नीचे गिरता देखकर वो हैरान रह गए। उनमें से एक ने कहा, यहाँ दो लोग कौन हो सकते हैं, ये गोली किसने चलाई है? अंदर मौजूद गार्ड्स को हमने मार दिया है और बाहर वालों को पता नहीं है अंदर क्या हो रहा है। युग राणा का लेफ्ट हैंड हौरव मलिक अकेला है तो फिर दो गोलियां एक साथ कैसे? वो अकेले भी तो शूट कर सकता है, कोई कच्चा खिलाड़ी थोड़ी ना है, दूसरे ने जवाब दिया। उनकी बातें सुनकर युग के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल थी। वो आगे एक्शन लेता उससे पहले उनमें से एक आदमी जोर से चिल्लाकर बोला, देखो गौरव मलिक, तुम अकेले हम 8 लोगों से मुकाबला नहीं कर पाओगे, अंदर 10 थे तो बाहर 50 होगे। हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, बस हमें डेविल का बच्चा सौंप दो। उसकी बात सुनकर युग को बहुत गुस्सा आया और साथ ही मलिक को भी, जिसने भी ये कहा था। उन दोनों ने एक साथ शूट करते हुए उसके ऊपर 3 से 4 गोलियां चलाई। वो दर्द से तड़पते हुए नीचे गिरा हुआ था। उसके आदमी गोली चलने की दिशा की तरफ बढ़ रहे थे तभी युग और मलिक बाहर निकले और उन्होंने उन पर अटैक बोल दिया। उनके साथियों ने जब युग और मलिक पर गोली चलाने की कोशिश की तो उन्होंने उनके आदमी को आगे कर दिया था। युग को वहां देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। जहां तक उन्हें खबर मिली थी युग कोमा में था लेकिन अब वो उनके सामने सही सलामत था और फाइट कर रहा था। युग को सामने देखकर उनका आधा जोश तो वहीं ठंड पड़ गया था। उनमें से एक ने कहा, डेविल द माफिया किंग, लेकिन आप तो कोमा में थे। उसकी बात की तरफ युग ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया था और उसके पास आकर उसका गला पकड़ लिया। युग उसका गला दबाने लगा और फिर उसके गले के पास ही बुलेट फायर की जिसके बाद वो मारकर नीचे गिर गया था। कुछ ही देर में उन्होंने उन सबको मार गिराया था। एक आदमी जो उनमें अधमरी हालत में नीचे गिरा था, युग उनके पास गया और उसके बाल पकड़कर खींचते हुए कहा, तो तुम्हें मेरा बेटा चाहिए, मांगा भी तो क्या, मेरा बेटा? किसने भेजा है तुम्हें यहां पर? सीधे सीधे बता दो वरना तुम्हारे खानदान के किसी भी शख्स को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोलते हुए युग की आंखें सर्द थी जिसे देखकर वो आदमी वैसे ही डर गया। मुझे डीके ने भेजा है। जैसे ही उसने बताया, युग ने उसके मुंह में गोली चला दी और अगले ही पल उसकी लाश जमीन पर बेजान हालत में पड़ी हुई थी। युग उस आदमी की लाश की तरफ देख रहा था, तभी मलिक बोला, ये डीके वही है जो माफिया के कोई रूल्स को नहीं मानता है, ना ही माफिया किंग को और ना ही किसी और अलायंस को। इसके अपने ही रूल हैं और ये फ्रीली काम करता है। मुझे शक है कि सम्राट मल्होत्रा की मदद यही कर रहा है। युग ने मलिक की तरफ देखकर कहा, लगता है अब काम पर वापस लौटने का वक्त आ गया है। डीके इस वक्त कहाँ है, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दो। रही बात सम्राट मल्होत्रा की, तो उसे तो मैं पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। हम उसे मार नहीं सकते हैं। आदित्य सिंघानिया से हमारे साथ रिलेशंस काफी अच्छे हो गए हैं। मल्होत्रा और सिंघानिया फैमिली में काफी वक्त से कॉन्ट्रैक्ट है कि वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर हमने डायरेक्ट सम्राट मल्होत्रा पर वार किया या उसे पूरी तरह बर्बाद किया, तो आदित्य सिंघानिया उसके प्रोटेक्शन के लिए आएंगे। मलिक ने युग को याद दिलाया, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अब वक्त आ गया है एक बड़ी माफिया वॉर का, जिसमें बर्बादी सम्राट मल्होत्रा की भी होगी, युग ने सख्त आवाज में कहा और फिर कृषा के पास गया। ध्रुव कृषा की गोद में सो गया था। युग ने उसे अपनी गोद में लिया और कृषा से कहा, मेरा कल का पूरा दिन तुम दोनों के लिए, लेकिन मैं इससे ज्यादा वेट और नहीं कर सकता। अब तक मैं लोगों के सामने नहीं आया हूँ, तो उन्हें मेरी पावर का अंदाजा नहीं रहा। लोग भूल गए हैं कि डेविल कौन है, तभी उस पर हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं।
तुमने शायद उस आदमी की बात पर ध्यान नहीं दिया, कृषा बोली। तुम कोमा में थे ये बात कोई नहीं जानता, पर उसे कैसे पता चला कि तुम कोमा में चले गए? मैंने और मलिक ने काफी अच्छे से सब कुछ संभाला था। तुम्हारे पुराने वीडियो शूट किए हुए थे, जिसमें हमने AI के जरिए तुम्हारी वॉइस की रिकॉर्डिंग बनाई थी। किसी को नहीं पता कि तुम होश में नहीं हो, और यकीन करो कि माइक ने ये काम काफी अच्छे से किया था। हर बार घर का ही भेदी लंका ढहाता है, लेकिन इस बार उसने गलत इंसान से पंगा लिया है। ये काम किसका है ये मैं अच्छे से जानता हूँ, बस एक दिन का वेट कर लो, सबको बताने का वक्त आ गया है। वंस ए डेविल ऑलवेज ए डेविल, युग कोल्ड वॉइस में बोला और फिर कृषा का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगा। उन्होंने मॉल का दरवाज़ा खोल लिया था। बाहर युग और डीके के सिक्योरिटी गार्ड अलग अलग जगह पर छुपे हुए थे। जब डीके के आदमियों ने युग को वहां से निकलते हुए देखा, तो उनका चेहरा गर से सफ़ेद हो गया था। उन्हें यही पता था कि युग कोमा में है, जबकि यहाँ युग सही सलामत था। ऊपर से वो जिस एटीट्यूड से चल रहा था, उससे साफ था कि अंदर उनके आदमी मरे पड़े हैं। बाहर निकलते ही युग ने चारों तरफ देखा। उसकी नज़र में कुछ आदमी आ गए थे, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। युग के चेहरे पर ईविल स्माइल थी और उसने अपने मन में कहा, इतने लोग काफ़ी होंगे डीके तक ये न्यूज़ पहुंचने के लिए कि डेविल आज भी जिंदा है। सोचते हुए युग अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, तो वहीं डीके के आदमी युग को देखते ही तुरंत वहां से खिसक लिए।